السلام علیکم. یہ پارٹ 18 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18. ہمارے لیے ان تینوں کی تلاش مشکل ہو جاتی. تم سب کو غائب دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا. پھر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خصوصی کرم کرتے ہوئے مجھے یاد دلایا کہ میرے پاس ریڈ ڈیٹ بھی موجود ہے, جس سے میں ریت میں دبے ہوئے تمام افراد کو تلاش کر سکتا ہوں. لیکن تین ساتھیوں کو تلاش کرنے سے پہلے میرے لیے تمہاری پیاس بجھانی بے حد ضروری تھی. جس طرح تم پانی کے لیے بلک رہے تھے اور یہاں جس قدر شدید گرمی پڑ رہی تھی, تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا تھا. اس لیے میں نے تمہیں خون پلانا مناسب سمجھا تھا, جو کراہت امیز اور غلط فعل ضرور تھا, لیکن چونکہ اس سے تم سب کی جان بچ سکتی تھی اس لیے مجھے مجبوراً یہ عمل کرنا پڑا تھا, عمران نے کہا. تو ان دونوں نے ازوات میں سر ہلا دیے اور عمران ریڈ ڈیٹ لے کر ادھر ادھر گھومنے لگا. اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی, جبکہ آلی کے نیچے سے نکلنے والی لیزر لائٹ ریت میں اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. عمران کے ہاتھ میں آلہ دیکھ کر کیپٹن شکیل, خاور اور صدیقی بھی اس کے پاس آ گئے تھے, جن کے چہروں پر واضح ناکامی دیکھی جا سکتی تھی, کیونکہ انہیں جولیا, نعمانی اور چوہان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا اور انہیں نہ چوہان مل رہا تھا, نہ نعمانی اور نہ ہی جولیا. انہوں نے دور تک کا ایریا چیک کر لیا تھا. طوفان کا رخ شمال کی طرف تھا. ہمیں ادھر ادھر چیک کرنے کے بجائے شمال کی طرف ہی زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیپٹن شکیل نے کہا. عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ شمال کی رخ پر ہی رہ کر آلے کی مدد سے ان تینوں کو تلاش کرنے لگا. جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. وہ تینوں بھوکے پیاسے ہیں, اگر وہ ریت میں زیادہ گہرائی میں دفن ہوئے تو ان کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو سکتا ہے, تنویر نے پریشانی کے عالم میں کہا. خیر کی دعا مانگو, ہم بھی تو ریت میں ہی دفن تھے. اگر اتنا وقت ہم ریت میں دفن ہونے کے باوجود زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں, اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, صفدر نے کہا. وہ عمران کے ساتھ ارد گرد کا تمام علاقہ چیک کر رہے تھے اور دل ہی دن میں اپنے ساتھیوں کے زندہ ہونے کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے. پھر اللہ نے جیسے ان کی دعا قبول کر لی. شمال کے رخ پر کافی دور آ کر عمران کو اسکرین پر ایک انسانی جسم نظر آیا جو ریت میں ہی دفن تھا. وہ یہاں ہیں, جلدی کرو, یہ جگہ کھودو, ہری اپ ہری اپ, عمران نے تیز لہجے میں کہا. تو وہ سب تیزی سے آگے بڑھے. انہوں نے تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹانی شروع کر دی. تھوڑی ہی دیر میں انہیں وہاں چوہان مل گیا. انہوں نے فوراً چوہان کو باہر نکال لیا. چوہان کی سانسیں رکی ہوئی تھی. صفدر نے چوہان کی نبضے اور دل کی دھڑکن چیک کی تو اس کے چہرے پر قدرے امید کے تاثر دکھائی دیے. اس کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اس کے منہ اور ناک میں ریت داخل نہیں ہوئی تھی. یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے, ہمیں اس کے پھیپڑوں میں ہوا پہنچانی ہے, صفدر نے چیختے ہوئے کہا. اور پھر وہ چوہان پر جھک گیا اور اس نے چوہان کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر اس کے منہ میں زور زور سے تھوکے مارنے لگا. چوہان کا سینہ پھولنے لگا. صفدر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اچانک چوہان کے منہ سے تیز سانس خارج ہوئی اور اس کا سینہ پھولنے پچکنے لگا. صفدر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر مخصوص انداز میں ہاتھ پریس کر رہا تھا تاکہ چوہان کا سانس بحال رہ سکے. کچھ ہی دیر میں چوہان کا سانس بحال ہو گیا اور اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی. اس دوران عمران آگے بڑھ گیا تھا. چوہان کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی. تھوڑی دور اسے نعمانی بھی مل گیا. عمران نے ساتھیوں کو آواز دی, तो उन्होंने हाथों से रेत खोदकर वहां से नवानी को भी बाहर निकाल लिया। नवानी की हालत भी चौहान से मुख्तलिफ नहीं थी, इसका सांस तनवीर ने बहाल किया था। नवानी की हालत देखकर तनवीर को अंदाजा हो रहा था कि इसके जिस्म में पानी की शदीद कमी है। इसका हाथ पहले ही जख्मी था, इसने एक हाथ से जख्म को प्रेस किया तो इसके जख्म से एक बार फिर खून निकल आया और इसने खून नवानी के मुंह में डालना शुरू कर दिया। जबकि चौहान की प्यास बुझाने के लिए सफदर ने दांतों से अपना हाथ काट कर इसके मुंह में अपना खून टपकाना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद इमरान को रेड डार्ट और आड़ी की मदद से जूलिया भी नजर आ गई। जूलिया भी रेत में दफन थी, वो चूंकि ज्यादा गहराई में नहीं थी इसलिए इसकी सांस चल रही थी। आंखों पर गागुल होने और मुंह पर कपड़ा होने की वजह से इसकी हालत चौहान और नवानी से खासी बेहतर थी, लेकिन प्यास से इसके होंठ भी खुश्क थे। इमरान ने इसका मुंह और नाक पकड़कर इसका सांस रोका तो कुछ ही देर में जूलिया भी होश में आ गई। जूलिया की हालत सुधारने के लिए इसे पानी की अशद जरूरत थी, इसके लिए इमरान ने ही इसके मुंह में खून डाला था। थोड़ी ही देर में वो सब एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जूलिया इमरान की जानिब ममनून नजरों से देख रही थी, जबकि चौहान सफदर की तरफ और नवानी तनवीर की तरफ एहसान मंद निगाहों से देख रहा था। एक दूसरे की जानें बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह एक दूसरे को अपना खून पिलाया था, ये इन सब की दोस्ती और यगानगत की बेहतरीन मिसाल थी। एक दूसरे की जानें बचाने के लिए उन्होंने अपनी बिगड़ी हुई हालत की भी परवाह नहीं की थी और दिलो जान से अपने साथियों पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम इस कदर खौफनाक और भयानक तूफान से बच कैसे गए थे। जब मोंडर ने मुझे उठाया था तो मेरा जिस्म और मेरा दिमाग इस तेजी से घूमना शुरू हो गया था जिसे लट्टू घूमता है, और मोंडर की जो रफ्तार थी इससे तो हमारे जिस्मों के टुकड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और हम इतने वक्त से रेत तले दबे हुए थे। इसके बावजूद हमारी सांस चल रही थी। क्या ये हैरत की बात नहीं है, जूलिया ने हैरत ज्यादा लहजे में कहा। मोंडर में हमारे जिस्मों के हकीकतन टुकड़े उड़ सकते थे, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि हमने हार्ड ब्लॉक्स पहन रखे हैं। इन हार्ड ब्लॉक्स की वजह से हमारी हड्डियां मोंडर में टूटने फूटने से बच गई थीं और हम तूफान में चकराते हुए इस जगह से दूर जा गिरे थे जहां पहले हम मौजूद थे। और हम रेत के नीचे इसलिए सांस ले रहे थे कि एक तो हमने आंखों पर गागुल्स लगा रखी थी और हमारे चेहरे ढके हुए थे जिससे रेत हमारे मुंह से फेफड़ों में नहीं गई थी। शदीद तूफान की वजह से हर तरफ रेत उड़ रही थी जो कारपेट की तरह हर तरफ फैलती जा रही थी। हम जहाँ गिरे थे हमारे ऊपर रेत आ गई थी जो नरम और भुरभुरी थी। रेत में मिट्टी की बनिस्बत ज्यादा खला होता है, इसलिए चेहरों पर कपड़े होने की वजह से हम रेत के नीचे भी सांस ले सकते थे जिससे हमारे फेफड़ों में कम मिकदार में ही सही लेकिन ऑक्सीजन जरूर पहुंच रही थी। हम पर तो अल्लाह का खुसूसी करम हुआ है कि हम ज्यादा गहराई में दफन नहीं हुए थे और ना ही हमारे ऊपर रेत का कोई टीला जमा हुआ था। अगर ऐसा हो जाता तो अब तक रेगिस्तानी कीड़े मकोड़े हमारी लाशें खा रहे होते, इमरान ने कहा। हाँ ये तो है, वाकई इस बार अल्लाह ताला की हम पर खुसूसी रहमत हुई है। अगर हमने एहतियात हार्ड ब्लॉक्स ना पहन रखे होते तो मोंडर्स में जाते ही हमारे जिस्म फट कर टुकड़े टुकड़े हो सकते थे, या फिर हम जहाँ दफन थे वहाँ रेत का कोई पहाड़ बन सकता था, फिर हमारा वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता, सफदर ने रुके बगैर बोलते हुए कहा। तो फिर हम सबको फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे रेज हो जाना चाहिए। अल्लाह अगर हम पर अपना खुसूसी करम कर सकता है तो हम इसके लिए शुक्राने की नफिल तो पढ़ ही सकते हैं, चौहान ने कहा। हाँ बिल्कुल, इससे अच्छी नेकी और क्या होगी, पहले हम सब शुक्राने के नफिल अदा करेंगे और फिर किसी तरफ जाने का सोचेंगे। क्यों इमरान? जूलियन ने असबात में सर हिलाकर कहा, नेकी करने के लिए इमरान को भला क्या एतराज हो सकता है? इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो सब देखते मुस्कुरा दिए। चुनांचे इन्होंने रेत से ही तयमम किया और फिर वो सब अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए नफिल पढ़ना शुरू हो गए। वो काफी देर तक नफिल अदा करते रहे और फिर उन्होंने खुशू खुशू के साथ दुआएं मांगना शुरू कर दी। अभी वो सब दुआएं मांगकर फारिग हुए ही थे कि अचानक इन्हें हवा की लहरों में गड़गड़ाहट की मखसूस आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर वो सब चौंक उठे और फिर इन्हें शुमार की तरफ दूर आसमान पर सिया रंग के बड़े बड़े परिंदे से इस तरफ आते हुए दिखाई दिए, जो बड़ा शुभ हेलीकॉप्टर थे। इन हेलीकॉप्टरों की तादाद किसी भी तरह 10 से कम नहीं थी और वो सब गनशिप हेलीकॉप्टर थे, जो निहायत तेजी से इसी तरह बड़े आ रहे थे। हेलीकॉप्टरों को इस तरह तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखकर वो सब तेजी से उठकर खड़े हो गए। इनके चेहरों पर कदरे परेशानी के तासर नुमाया हो गए थे, जबकि इमरान इन हेलीकॉप्टरों को देखकर इंतहाई बेचैन नजरों से इधर उधर देखने लगा, जैसे वो दुश्मनों की नजरों से छुपने के लिए कोई राह तलाश कर रहा हो। लेकिन रेत के खुले मैदान में भला इनके लिए छुपने या भागने की कौन सी जगह हो सकती थी? अल्बर्टो ने टनल फैन ठीक करने के लिए जाने से पहले एक बार फिर अपने तौर पर डेजर्ट की चेकिंग कर लेना जरूरी समझा था। चनानचा इसने मशीन ऑन की और मुख्तलिफ बटन प्रेस करके स्क्रीन पर सहराई मंजर देखना शुरू हो गया। चेहरा बेहद तवील और अरीज था। वो एक नाप घुमाते हुए जनूबी हिस्से से चेकिंग कर रहा था। नाप घुमाते हुए स्क्रीन पर सहरा के मंजर बदलते जा रहे थे। वो काफी देर तक सहरा को मुख्तलिफ हिस्सों से चेक करता रहा। फिर वो नाप घुमाकर सहरा के वस्ती हिस्से की चेकिंग करने लगा। अभी वो नाप घुमा ही रहा था कि अचानक इसने सहरा में 6 अफराद को देखा। इन अफराद को देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, ये कौन है? अल्बर्टो ने हैरत से इन 6 अफराद की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, जिनमें से 4 इधर उधर घूम रहे थे और एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपने बाजू में थाम रखा था, जो बेहोश मालूम हो रहा था। अल्बर्टो ने मशीन के 2-3 बटन दबाए और फिर इसने मंजर बदलने वाली नाब के साथ लगी हुई दूसरी नाब को घुमाना शुरू कर दिया, जिस पर क्लोजअप लिखा हुआ था। इस नाब के घूमते ही वो अपराध स्क्रीन पर क्लोज होते चले गए और फिर जैसे ही अल्बर्टो की नजर इन अपराध के चेहरों पर पड़ी, वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओहो, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही है जिन्हें मैंने तूफान आने से पहले सहरा में देखा था और जिन्हें बॉस पाकिस्तान एजेंट कह रहे थे, अल्बर्टो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कैसे मुमकिन है? इस कदर खौफनाक और भयानक तूफान से ये सब कैसे बच गए? इस तूफान से तो ये किसी भी सूरत में नहीं बच सकते थे और तूफान से बचने के लिए इनके पास कोई महफूज पनागाह भी नहीं थी। अल्बर्टो ने इसी तरह हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। इसे वो गढ़े भी दिखाई दे रहे थे जहाँ इंसानी जिस्मों के निशान बने हुए थे, जिससे इसे साफ मालूम हो रहा था कि वो सब रेत में दबे हुए थे और वहाँ से निकलकर बाहर आए थे। लेकिन इन खौफनाक और इंतहाई भयानक तूफान से बच निकलना अल्बर्टो के लिए इंतहाई हैरान कुन था। ये इंसान नहीं हो सकते। इस तूफान ने घिरने के बाद इनका जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन ये सब इस तरह से हरकत कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। कैसे बच गए ये सब? और इनके 3 और साथी कहाँ हैं? इनमें इनके साथी लड़की भी दिखाई नहीं दे रही है, अल्बर्टो ने इसी तरह से बड़बड़ाते हुए कहा। इंसान ने इस बैठे हुए शख्स का क्लोज किया जिसकी गोद में एक नौजवान का सर था और बैठे हुए शख्स ने अपना एक हाथ जख्मे कर रखा था जहाँ से खून निकल रहा था और वो शख्स बेहोश नौजवान के मुंह में अपना खून टपका रहा था। इस नौजवान को बेहोश नौजवान के मुंह में खून डालते देखकर अल्बर्टो की आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। ये शख्स बेहोश नौजवान को अपना खून क्यों पिला रहा है? ओहो, कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यास की वजह से नौजवान बेहोश हो और इसकी प्यास बुझाने के लिए इसका साथी इसे खून पिला रहा हो? एल्बर्ट टू ने हैरत भरे लहजे में कहा, और फिर वो जो जो सोचता गया इसे यकीन होता चला गया कि बैठा हुआ नौजवान बेहोश नौजवान को अपना खून पिलाकर इसकी प्यास का ही अजाला करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में वो नौजवान होश में आ गया और दूसरे नौजवान का हाथ पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। अब वो आपस में बातें कर रहे थे। फिर होश में आने वाले नौजवान ने अपनी कमर से एक सफरी थैला उतारा और नीचे बैठकर इसे खोलने लगा, और फिर इसने हथेले में से एक आला सा निकाल लिया। इस आले को देखकर एल्बर्ट टू बेख्तियार चौंक पड़ा। रेड डेट, वो इनके पास तो रेड डेट आला है। इस आले की मदद से तो ये आसानी से रेत में दबे हुए अपने साथियों को तलाश कर लेंगे, एल्बर्ट टू ने चौंकते हुए कहा। फिर इसने जल्दी से सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस करके इसने रिसीवर कान से लगा लिया। यस, रास्ता मिलते ही दूसरी तरफ से काफिले की गर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। कंट्रोल रूम से एल्बर्ट टू बोल रहा हूँ बॉस, एल्बर्ट टू ने परेशान अंदाज में कहा। ओ, तुम अभी कंट्रोल रूम में हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम टनल सीन ठीक करने के लिए जा रहे हो, दूसरी तरफ से काफिले ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, टनल में जाने से पहले मैंने सोचा कि एक बार और मैं सहरा की चेकिंग कर लूं ताकि मैं जहनी तौर पर मुतमईन हो जाऊं। मैं काफी देर से सहरा की चेकिंग कर रहा था तो अचानक मुझे सहरा के वस्त में 6 अफराद दिखाई दिए, एल्बर्ट टू ने कहा। 6 अफराद? क्या मतलब, कौन है वो 6 अफराद? दूसरी तरफ से कार्फिले ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। इनका ताल्लुक इन्हीं अफराद से है बॉस, जिन्हें मैंने तूफान से पहले सहरा में देखा था। मेरा मतलब है पाकिस्तान एजेंट, एल्बर्ट टू ने रुक रुक कर कहा, जैसे वो पाकिस्तान एजेंटों के जिंदा होने के बारे में काफिले को बताने से वो हिचकिचा रहा हो। पाकिस्तान एजेंट? ओहो, वो जिंदा है? ये तुम क्या कह रहे हो? इस कदर खौफनाक और शदीद तूफान में घिरने के बावजूद वो जिंदा है? दूसरी तरफ से काफिले की इंतहाई हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। यस बॉस, मैं भी इन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गया था। अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो F5 टॉप के खौफनाक सहराई तूफान से कैसे बच निकले हैं, एल्बर्ट टू ने कहा। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, वो इंसान है या इनका ताल्लुक किसी खलाई मखलूक से है जो सहराई तूफान में घिरे रहने के बावजूद भी जिंदा रहती हैं, काफिले ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है बॉस, एल्बर्ट टू ने जवाब दिया। तुम 6 अफराद का बता रहे हो जबकि तूफान आने से पहले तुमने वहाँ 9 अफराद देखे थे, बाकी 3 कहाँ हैं? दूसरी तरफ से काफिले ने पूछा। इनमें से 3 अफराद गायब हैं बॉस, जिनमें लड़की भी शामिल है, और वो सब अपने इन 3 साथियों को ही तलाश करते फिर रहे हैं, एल्बर्ट टू ने जवाब दिया। हैरत है इनके, अगर 3 साथी गायब हैं तो वो 6 कैसे बच गए? और तूफान की शिद्दत 12 घंटों तक रही थी, वो अगर जिंदा भी थे तो क्या इन्हें भूख प्यास नहीं लगी? बगैर पानी के वो सब हार्ड डिजर्ट में कैसे जिंदा रह सकते हैं, काफिले ने कहा। यस बॉस, वो सब वाकई हैरत अंगेज इंसान है, भूख प्यास ने इन्हें निढाल कर रखा है। लेकिन फिर मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा था, मैंने एक दूसरे की प्यास बुझाने के लिए इन्हें एक दूसरे को अपना खून पिलाते हुए देखा है, एल्बर्ट टू ने कहा। खून? क्या मतलब, काफिले ने चौंक कर कहा, और एल्बर्ट टू इसे तफसील बताने लगा। वो काफिले से बातें कर रहा था और इसकी नजरें मुसलसल स्क्रीन पर जमी हुई थी। जिस नौजवान ने अपने सफरी बैग से रेड डेट निकाला था, इसने इसी आले की मदद से लड़की और अपने बाकी 2 साथियों को भी ढूंढ निकाला था। और फिर जब एल्बर्ट टू ने ढूंढने वाले साथियों को, रेत से निकले वाले बाकी साथियों को भी खून पिलाते देखा तो उसकी आंखें वाकई हैरत से फटने के करीब हो गई। ये बात इसने काफिले को बताई तो दूसरी तरफ से काफिले को भी जैसे सांप सूंघ गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि बेहाल इंसान अपने साथियों की जानें बचाने के लिए इन्हें अपना खून पिला सकते हैं, और वो भी इस हाल में जब खून इनकी रगों में अपना खून भी भूख प्यास से सूख चुका हो। वो सब वाकई हैरत अंगेज इंसान है, इंतहाई हैरत अंगेज इंसान। एक दूसरे को अपना खून पिलाकर इन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि वो एक दूसरे के किस कदर खैर ख्वाह हैं, और एक दूसरे की जाने बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इंसान वाकई खतरनाक होते हैं, बेहद खतरनाक, काफिले ने कुछ देर बाद कहा। यस बॉस, ऐसे खतरनाक इंसानों का जिंदा रहना हमारे लिए और ब्लैक हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर की बका के लिए भी खतरनाक हो सकता है, एल्बर्टो ने कहा। तो फिर देख क्या रहे हो नॉनसेंस, फौरन इन्हें हलाक करने का बंदोबस्त करो। वो तूफान से उड़ते हुए हार्ट डेजर्ट के वस्त तक आ चुके हैं। अगर वो अब तक जिंदा हैं, तो फिर वो हेडक्वार्टर तक भी पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, इनके सरकूबी के लिए फौरन रेड कमांडोज भेज दो, ताकि वो इन सबका वही खात्मा कर दें, कार्फिलिया ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस बॉस, मैं अभी कर्नल डेवगन से बात करता हूँ। कर्नल डेवगन रेड कमांडोज के साथ जाकर इन सबकी बोटियां उड़ा देगा, एल्बर्टो ने कहा। अभी फौरन कर्नल डेवगन को भेजो, इससे कहो कि वो जल्द से जल्द तेज रफ्तार और गनशिप हेलीकॉप्टर और रेड कमांडोज लेकर जाए और बाकी छह एजेंटों को वहीं खत्म कर दे। इसे ये काम शाम होने से पहले पहले करना होगा, क्योंकि शाम तक चीफ वापस आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि चीफ के आने से पहले इन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा हो जाए, काफिले ने कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी कर्नल डेवगन से बात करता हूँ, एल्बर्टो ने कहा। इसे रवाना करने के बाद भी तुम पाकिस्तानी एजेंटों पर नजर रखना, जब तक कि वो रेड कमांडोज के हाथों अपने अंजाम तक ना पहुंच जाएं। टिनल फैन का काम बाद में होता रहेगा, बल्कि कर्नल देवगन से कहो कि वो मुझसे बात करे। इसे डेजर्ट भेजने का मैं खुद हुक्म दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारा हुक्म ना माने, काफिले ने इसे हुक्म देते हुए कहा। यस बॉस, मैं टनल के फैन को ठीक करने का काम बाद में कर लूंगा, इससे पहले वाकई इन पाकिस्तानी एजेंटों का हलाक होना बेहद जरूरी है। मैं कर्नल देवगन से कहता हूँ कि वो अभी आपसे राब्ता कर ले, एल्बर्टो ने जवाब दिया, और दूसरी तरफ से काफिले ने इससे राब्ता खत्म कर दिया। काफिले से राब्ता खत्म होते ही एल्बर्टो ने क्रेडल पर हाथ मारा तो रिसीवर में टून आ गई। टून आते ही एल्बर्टो ने दो बटन प्रेस कर दिए, फौरन ही दूसरी तरफ से खंती जाने की आवाज सुनाई दी। यस रेड कमांडो सेक्शन, राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। कंट्रोल रूम से एल्बर्टो बोल रहा हूँ, एल्बर्टो ने कर्नल डेवगन की आवाज पहचान कर कहा। बोलो, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से कर्नल देवगन ने इसी तरह से गुर्राहट भरे अंदाज में कहा। कर्नल देवगन, आप फौरी तौर पर सेकंड चीफ से बात कर लें, वो आपकी कॉल के मुंतजर हैं, एल्बर्टो ने कहा। क्यों, क्या काम है इन्हें मुझसे? दूसरी तरफ से कर्नल देवगन ने चौंक कर कहा। आप इन्हें कॉल कर लें, वो खुद ही बता देंगे कि इन्हें आपसे क्या काम है, एल्बर्टो ने कहा। वो जानता था कि अगर इसने कर्नल देवगन से कोई बात की तो कर्नल देवगन इसे तफसील पूछने की चक्करों में पड़ जाएगा, और वो काफिले से बात करने में जितनी देर लगाएगा, काफिले उल्टा इसे ही डांट देगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, दूसरी तरफ से कर्नल देवगन ने कहा, और एल्बर्टो ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर कैडल पर रख दिया। इसने स्क्रीन की तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक बार फिर हैरानी आ गई। पाकिस्तानी एजेंट इबादत करने में मशहूर हो गए थे, इन्हें इस हालत में इबादत करते देखकर एल्बर्टो को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इस कदर खराब हालत में भी इबादत का सोच सकता है। एल्बर्टो इन्हें इबादत करते देखता रहा, वो काफी देर तक इबादत करते रहे, और फिर उन्होंने सजदे में गिरकर दुआएं मांगना शुरू कर दी। इनकी इबादत तो तवील ही होती जा रही है, और ये कर्नल देवगन कहाँ रह गया है? इसे तो अब तक इन सबके सरों पर पहुंच जाना चाहिए था। एल्बर्टो ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने मशीन पर लगे हुए दो बटन प्रेस किए और फिर नाब घुमाकर स्क्रीन का मंजर बदलना शुरू हो गया। वो आसमान पर रेड कमांडोस के गन शिप हेलीकॉप्टरों को तलाश कर रहा था, जिसके ख्याल के मुताबिक अब तक वहां पहुंच जाने चाहिए थे। फिर अचानक से शुमार की जानिब से 10 गन शिप हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, जो नहायत तेजी से जुनूब की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। गन शिप हेलीकॉप्टरों को देखकर एल्बर्टो की आंखों में बेपना चमक आ गई। इसने हाथ बढ़ाकर मशीन के चंद बटन और प्रेस किए तो स्क्रीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अब स्क्रीन के एक हिस्से में से गन शिप हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और दूसरे हिस्से में इसे पाकिस्तानी एजेंट इबादत करते हुए नजर आ रहे थे। सहराई तूफान से तो ये सब बच निकले थे। अब मैं देखता हूँ कि रेड कमांडोज के खौफनाक तूफान से कैसे बचेंगे, एल्बर्टो ने हुर्राहट भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। पाकिस्तानी एजेंटों ने इबादत खत्म कर दी थी और वो चौंक कर शुमार की तरफ देख रहे थे, जैसे इन्हें भी हेलीकॉप्टरों के आने का इल्म हो गया हो। फिर एल्बर्टो ने इन सबको उठकर खड़े होते देखा। जिस शख्स ने रेड डार्ट से अपनी साथी लड़की और दूसरे दो साथियों को रेत के नीचे तलाश किया था, वो नहर बेचैन नजरों से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो बचने के लिए कोई पनाह गाह ढूंढ रहा हो। लेकिन वहाँ भला कोई पनाह गाह कहाँ हो सकती थी। दूसरे लम्हे एल्बर्टो के होंठों पर इंतहाई जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई, जिसने पाकिस्तानी एजेंटों को नीचे लेटते और खुद पर रेत डालकर खुद को छुपाते हुए देखा। ये समझ रहे हैं कि ये रेत के नीचे छुपकर कर्नल देवगन की नजरों से बच जाएंगे। भूल है ये इनकी, कर्नल देवगन की नजरें चीतों से भी ज्यादा तेज है, जो रात के अंधेरे में भी देख सकती हैं। ये सब अगर पाताल में भी चले जाएं, तब भी कर्नल देवगन इन्हें ढूंढ निकालेगा, और कर्नल देवगन जब तक इन सबको हलाक नहीं कर देगा वो वापस नहीं आएगा, एल्बर्टो ने कहा। इसी लम्हे अचानक फोन की घंटी बजी तो एल्बर्टो ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, इसने अपने खुसूसी मखसूस लहजे में कहा। कार्फले स्पीकिंग, कार्फले की आवाज सुनाई दी। ओ यस बॉस, हुक्म, कार्फले की आवाज पहचान कर एल्बर्टो ने मौदबाना लहजे में कहा। तुम इन सब पर नजर रख रहे हो ना, दूसरी तरफ से कार्फले ने सख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, मैं इन्हें मुसलसल मॉनिटर कर रहा हूँ। कर्नल देवगन अपने 10 हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड के साथ वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, एल्बर्टो ने कहा। तुम कर्नल देवगन के साथ भी रास्ते में रहो। इनसे छुपने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों के पास कोई और जगह हो या न हो, लेकिन वो खुद को रेत में छुपाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करें तो तुम कर्नल देवगन को इनकी पोजीशन और इनके छुपने के बारे में बता सकते हो, दूसरी तरफ से कार्फिल्ले ने कहा। और कार्फिल्ले की बात सुनकर एल्बर्टो हैरान रह गया। कार्फिल्ले ने जो बात की थी, पाकिस्तानी एजेंट वाकई ऐसा ही कर रहे थे, और एल्बर्टो हैरान था कि कार्फिल्ले को कैसे अंदाजा हो गया था कि वो सब कर्नल देवगन की नजरों से बचने के लिए खुद को रेत में छुपा सकते हैं। वो दिल ही दिल में कार्फिल्ले की जहानत का कायल हो गया था। कार्फिल्ले वाकई शैतानी दिमाग रखने वाला इंसान था। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी कर्नल देवगन से रब्ता करता हूँ और मैं इन्हें पाकिस्तानी एजेंटों की सही लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, एल्बर्टो ने कहा। इसने जानबूझकर कार्फिल्ले को नहीं बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट इसकी तौके के ऐन मुताबिक खुद को रेत में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कार्फिल्ले ने एल्बर्टो को मजीद हिदायत दी और फिर इसने रास्ता खत्म कर दिया। इससे पहले कि वो कर्नल देवगन से रास्ता करके इसे पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में बताता कि वो कहाँ हैं और रेत में कहाँ छुपे हुए हैं, इसने गन शिप हेलीकॉप्टरों को ठीक इसी तरफ बढ़ते हुए देखा, जहाँ पाकिस्तानी एजेंट रेत में छुपे हुए थे और फिर एल्बर्ट टू ने हेलीकॉप्टरों के नीचे लगी हैवी मशीन गनों को घूमकर इन ताकतशाली एजेंटों की तरफ होते हुए देखा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 19 में समाप्त फरमाएं।